ॐ शांति ॐ शांति ॐ शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा की पूरी मुरली का सार है, मीठे बच्चे अब चलो घर। क्यों? क्योंकि ये देह और देह की दुनिया अब मिट्टी में मिलने वाली है, और इसीलिए इस समय बाबा हमें बहुत अच्छी अक्कल सिखलाता है, जो अक्कल दुनिया में कोई नहीं दे सकता, और वो यही है कि बच्चे तुम अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, तो आत्मा तव प्रधान से सतो प्रधान बनती जाएंगी। बाबा कहते हैं, बच्चे इस समय तुम जीते जी मेरे गले का हार बनते हो, अर्थात मूल वतन बाबा का घर जहाँ है वहाँ तुम आत्माएं भी रहती हो। साथ में बाबा ने कहा है कि बच्चे इस समय तुम मेरे ब्रह्मा मुखवंशावली स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे बनते हो। तुम ब्रह्मा मुखवंशावली मेरे ब्राह्मण बच्चे हो। शिव बाबा के तो हो ही, लेकिन ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण बच्चे हो। साथ में बाबा ने कहा है कि बच्चे कन्या एक जो है 100 ब्राह्मणों से उत्तम है, और 21 कुल का उद्धार ये कन्याएं ही करती हैं। भीष्म पितामह को बाण मारने वाली कन्याएं हैं, वो इस समय का गायन है। साथ में बाबा ने कहा है कि आत्मा बहुत छोटी बिंदी है, 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, ये सबसे बड़ा वंडर है। जैसे जैसे आत्मा कर्म करती है, दुखी सुखी साहूकार या गरीब आत्मा ही बनती है। इसलिए बाबा ने कहा, इस समय जितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ेंगे तो इतना ही ऊंच पद पाएंगे, और ऐसे मेरे बच्चे ज्ञानी तो योगी तो बच्चे ही ऊंच पद पाएंगे, ऐसे बच्चे छिपे नहीं रह सकते हैं, और ऐसे बच्चे बाप के दिल तक नसीब बनते हैं। और तब बाबा ने कहा है कि बच्चे चलो अब घर, अब घर चलने का समय आया है, और देह और देह के संबंधों को भूलो। पूरी मुरली का सार है, और कहा बाप को याद करो, घर को याद करो, खूब पुरुषार्थ करो, सिर पर पापों का बोझा तभी उतरेगा, पापों का बोझा जो सिर पर है वो नाश होगा। तो अभी इस समय हम प्यारे बाबा की मुरली सुनेंगे। आज की मुरली की डेट है 24/4/2026। मीठे बच्चे अब वापस घर जाना है, मीठे बच्चे अब वापस घर जाना है, इसलिए देहभान को भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझो। इसीलिए देह भान को भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझो, सबसे ममत्व मिटा दो, सबसे ममत्व मिटा दो। प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे बाप से कौन सा कल सीखते हो? संगम युग पर तुम बच्चे बाप से कौन सा कल सीखते हो? उत्तर है, तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, अपनी तकदीर ऊंची कैसे बनाएं, यह अकल अपनी तकदीर ऊंची कैसे बनाएं, यह अकल अभी ही तुम सीखते हो, यह अकल अभी ही तुम सीखते हो, जो जितना योगयुक्त और ज्ञान युक्त बने हैं, उनकी उतनी उन्नति होती रहती है, उन्नति करने वाले बच्चे, कभी भी छिप नहीं सकते, बाप हर एक बच्चे की एक्ट से समझते हैं, कि कौन सा बच्चा अपनी ऊंची तकदीर बना रहे हैं, गीत है मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। न बाबा के बन गए, बस बाबा तू जिस हाल में भी रखे, बाबा तो बहुत अच्छे हाल में रखेगा, लेकिन उसका अनुभव करना मेरे अपने हाथ की बात है। तो इसलिए बाबा कहता है मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ये दुनिया वालों के गीत लिए गीत नहीं है, ये हम बच्चों के लिए इस समय ये गायन बना हुआ है। ओम शांति। सब बच्चों ने ये गीत सुना, बच्चे कहने से सर्व सेंटर के बच्चे जान जाते हैं कि बाबा हम ब्राह्मणों के लिए कहते हैं कि बच्चे यह गीत सुना, जीते जी गले का हार बनने के लिए अर्थात मूल वतन में जाएं, बाबा के घर में रहने के लिए। वह शिव बाबा का घर है ना, जिसमें सब शालिग्राम रहते हैं, ना बाबा कहते हैं आत्मा का दूसरा नाम क्या है, शालिग्राम। तो जिसमें सब शालिग्राम रहते हैं, बच्चे ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी जानते हैं कि बरोबर वही बाबा आए हुए हैं। देखो बाबा ने हम बच्चों को टाइटल दे दिया, इस टाइटल को हमने स्वीकार भी किया, लेकिन अब हमें अपने आप से स्वीकार करके ये अनुभव करना है कि क्या हम सच्चे ब्राह्मण कुलभूषण हैं, हाफ कास्ट ब्राह्मण हैं या फुल कास्ट ब्राह्मण हैं, ये अपने आप से अपने से क्या करना है, चेक करना है, चेक करके चेंज करना है। और साथ में बाबा कहता है तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो, कैसे, तो अमृत वेले बाबा ने कहा है बच्चे तुम्हें क्या करना है, स्वदर्शन चक्र अपनी बुद्धि में घुमाना है, है ना, जो सारे दिन में बट नेचुरल अंदर से ही वो श्रेष्ठ स्मृतियां जो हमने बिताई हैं, वो श्रेष्ठ स्मृतियां इमर्ज हो जाती हैं। तो इसलिए बाबा कहता है स्वदर्शन चक्रधारी जानते हैं कि बरोबर वही बाबा आए हुए हैं, कहते हैं अभी तुमको अशरीरी बनना है, अर्थात देह के भान को भूलना है, यह पुरानी दुनिया तो मिट जाएगी, इस शरीर को तो छोड़ना है, अर्थात सबको छोड़ना है, क्योंकि यह दुनिया ही खत्म होनी है। तो अब चलना है कहाँ? अब चलना है, आवाज नहीं आया। बाबा कहता है अब चलना है वापस घर। सभी बच्चों को अब खुशी होती है क्योंकि आधा कल्प घर जाने के लिए बहुत धक्के खाए हैं, परंतु रास्ता मिला नहीं और ही भक्ति मार्ग का चहचट्टा प्रकृति में है। दिखावा देख मनुष्य फंस पड़ते हैं। क्या है भक्ति मार्ग की दुबन? ब्रैकेट में है दलदल, जिसमें मनुष्य मात्र गले तक फंस गए हैं। अब बच्चे कहते हैं बाबा हम पुरानी दुनिया पुरानी शरीर को भूलते हैं, अब बाप के साथ अशरीरी बन घर चलेंगे। सबकी बुद्धि में है परम पिता परमात्मा परम धाम से आए हैं हमको ले जाने के लिए। सब कहते हैं तुम पवित्र बन हमको याद करो, जीते जी मरना है, तुम जानते हो वहाँ घर में आत्माएं रहती हैं। सो भी आत्मा तो बिंदी है, निराकारी दुनिया में सब आत्माएं चली जाएगी। जितने मनुष्य हैं उतनी आत्माएं वहाँ होंगी, नहीं कोई ऊपर नीचे नहीं होगा। बाबा कहते जितनी आत्मा मनुष्य नीचे हैं उतनी आत्माएं ऊपर होंगी। आत्माएं उस महातत्व की कितनी जगह लेती हैं, शरीर तो इतना बड़ा है, कितनी स्पेस लेता है, बाकी आत्मा को कितनी जगह चाहिए। हम आत्माएं कितनी छोटी जगह लेंगी? बहुत थोड़ी है ना। बाबा ने पहले प्रश्न किया, फिर जवाब दे रहा है कि आत्मा तो बहुत छोटी जगह लेंगी क्योंकि बिंदी है, सेक्शन वाइज अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। बच्चों को ये सब बातें बाप द्वारा सुनने का सौभाग्य कब मिलता है? बच्चों को बाप द्वारा ये सुनने का सौभाग्य माताएं कब मिलता है? इस समय है ना, तो ये समय बड़ा वैल्यूएबल है। इसलिए मुरली का जवाब जब सही आता है ना तो आत्मा को बड़ी खुशी होती है। क्यों खुशी होती है? क्योंकि हर रोज मुरली सुनने की जो आदत है ना तो आत्मा को लिंक रहती है और आत्मा की वो लिंक सही जवाब देती है और इसलिए फिर आत्मा को खुशी होती है। जो बाबा आज की मुरली में बोलता है, बाबा गोल है, बाबा का ज्ञान भी गोल गोल है, लेकिन आज जो बाबा ने कहा वही जवाब अगर मुख से निकला, बुद्धि में याद आया मुख से निकला तो आत्मा को बड़ी खुशी होती है। और यही बेनिफिट है हर रोज बाबा की मुरली सुनने का, है ना, पढ़ाई पढ़ने का। तो बच्चों को ये सब बातें बाप द्वारा सुनने का सौभाग्य अभी मिलता है। बाप ही बतलाते हैं कि तुम नंगे ब्रैकेट्स में हैं, बिना शरीर के आए थे, फिर शरीर धारण कर पाठ बजाया, अब फिर जीते जी मरना है, सबको भूलना है, बाप आकर मरना सिखलाते हैं। कहते हैं अपने बाप को अपने घर को याद करो, खूब पुरुषार्थ करो। क्या कहा? खूब पुरुषार्थ करो, योग में रहने से पाप नाश होंगे। फिर आत्मा तम प्रधान से सत प्रधान बन जाएगी, इसलिए बाप राय देते हैं। कल्प पहले भी कहा था कि देह के सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो, सबका एक बाप तो वह है ना। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली बच्चे हो, जो ज्ञान पाते रहते हो। शिव के बच्चे तो हो ही, यह तो सबको निश्चय है। हम भगवान के बच्चे हैं, परंतु उनके नाम रूप देश काल को भूलने के कारण भगवान से किसका भी इतना लाभ नहीं रहता है। किसको दोष नहीं देते हैं ना, बाबा कहता मैं किसी को भी दोष नहीं देता हूँ। यह भी ड्रामा में नोंद है। बाप समझाते हैं कि तुम आत्मा कितनी छोटी बिंदी हो, उसमें 84 जन्मों का पाठ नोंधा हुआ है। कितना वंडर है, आत्मा कैसे शरीर लेकर पाठ बजाती है। अभी तुमको बेहद के पाठ का पता पड़ा है, ये ज्ञान और कोई को नहीं है ना। हम बच्चों के सिवा और किसी के पास ये ज्ञान है ही नहीं। सबसे बड़ा खजाना हमारे पास है, और इसलिए बाबा कई बार मुरली में कहता है ना कि यहाँ का छोटा बच्चा अगर वो जानता है कि मेरी आत्मा कहाँ है, और महात्मा को पूछो तो उसको पता नहीं है। यहाँ राजयोगी बच्चा उसको पूछ ले कि तुम्हारी आत्मा कहाँ है, अगर बच्चे ने जवाब दे दिया कि मेरी आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में है, तो उस महात्मा से ये बच्चा, वो महात्मा महात्मा नहीं, ये बच्चा बड़ा महात्मा कहलाएगा, क्योंकि सही जवाब उसके पास है। तो बाबा कहता है ये मेरे सिवा और कोई दे नहीं सकता, ये ज्ञान और कोई को नहीं है। तुम भी देह अभिमानी थे, अभी कितना पलटा खाया है। वह भी हर एक की तकदीर पर है। कल्प पहले वाली तकदीर का अब साक्षात्कार हो रहा है। दुनिया में कितने ढेर मनुष्य हैं, हर एक की अपनी तकदीर है। जैसा जैसा जिसने कर्म किया है, उस अनुसार दुखी सुखी सावकार गरीब बनते हैं, बनती आत्मा है। आत्मा कैसे सुख में आती है व फिर दुख में आती है, यह बाप बैठ समझाते हैं। तम प्रधान से सत प्रधान बनने का अकल बाप ही सिखलाते हैं। कल्प पहले मुआफिक, जितना जिसने अकल पाया है उतना ही अब पा रहे हैं। पिछाड़ी तक हर एक की तकदीर को समझ जाएंगे, है ना। हर एक को अपनी तकदीर का पुरुषार्थ के अनुसार अपने आप से अपने पाठ का साक्षात्कार हो जाएगा, है ना। इसमें अन्याय अन्याय वो कोई पार्शलिटी की बात आती नहीं है। इसलिए भक्ति में गायन है, भगवान तेरे घर ढेर है लेकिन अंधेर नहीं है, है ना। तो वो यही ये सिद्ध होता है इस वाक्य से, है ना। इसलिए भक्ति में भी भगत लोग इसका गायन करते हैं, और वो कहाँ है, वो यही भगवान का सच्चा घर है। ये मेरी आत्मा में जहाँ पक्का निश्चय हो गया ना, तो हम उच्च पुरुषार्थ किए बिना रह नहीं सकते। वो आत्मा को बट नेचुरल अंदर से उछल आती है। फिर कहेंगे कल्प कल्प ऐसे ही हर एक की तकदीर रहेगी। जो अच्छा योग्युक्त ज्ञानयुक्त होगा वह सर्विस भी करता रहेगा। जो अच्छा योग्युक्त ज्ञानयुक्त होगा वह सर्विस भी करता रहेगा। पढ़ाई में सदैव उन्नति होती रहती है। कोई बच्चे जल्दी उन्नति को पा लेते हैं, कोई बहुत माथा खपाते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं। कल्प पहले मुआफिक जो जो उन्नति करते हैं वह छिपे नहीं रह सकते। नहीं, कोई किसको कितना भी किस भी ढंग से उसको छिपाने की कोशिश करेंगे, छिपे नहीं रहेंगे। हीरे को कीचड़ में डाल दो तो भी हीरा अपनी ओरिजिनलिटी की वो चमक दे ही देता है। ऐसे बाबा कहता है कि मेरे ज्ञानी तू योगी तू बच्चे, सर्विस करने वाले बच्चे कभी छिपे नहीं रह सकते। इसलिए हम किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। न कोई मेरा दुश्मन है, न कोई मेरा दोस्त है, न मैं किसी को दोष दे सकती हूँ। तब कहा हे मानव, तेरा कर्म ही तेरा फल है, तेरा कर्म ही तेरा फल है। और इसीलिए कहा कर्म ही बलवान है। वह छिपे नहीं रह सकते। बाप तो जानते हैं ना सबका कनेक्शन किसे है, किसे है? सबका कनेक्शन शिव बाबा से है। या भी बच्चों की एक्ट देखते समझ जाते हैं तो वह भी देखते हैं। इनसे भल कोई छिपाए परंतु शिव बाबा से तो छिपा नहीं सकेंगे। भक्ति मार्ग में ही परमात्मा से नहीं छिपा सकते तो ज्ञान मार्ग में कैसे छिपा सकते। बाप समझाते रहते हैं, पढ़ाई तो बहुत सहज है, कर्म भी करना है, रहना भी मित्र संबंधियों के पास पुरानी दुनिया में है, वहाँ रहकर मेहनत करनी है, यहाँ रहकर पुरुषार्थ करने वालों से वहाँ घर में रह पुरुषार्थ करने वाले तीखे हो सकते हैं। अगर ऐसी लगन है तो, अगर ऐसी लगन है तो शास्त्रों में अर्जुन और भील का मिसाल है ना। भल भील बाहर का रहने वाला था लेकिन अभ्यास से वह अर्जुन से भी तीर चलाने में होशियार हो गया। ये कहानी सब जानते हैं, है ना? तो गृहस्थ व्यवहार में रहा कमल फूल समान रहना है। यह भी तुम मिसाल देखेंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहा बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं। वह जास्ती वृद्धि को पाते रहेंगे। यहाँ रहने वालों को भी माया छोड़ती नहीं है। बाबा कहता है माया मेरी बेटी है। मुरली में कभी कभी बोलता है बाबा याद दिलाता है माया मेरी बेटी है। बाबा माया को भेजता है ठका करने के लिए। मटका लेते हैं तो ठका करते हैं ना, देखते हैं, जांच करते हैं कि कच्चा है पक्का है। तो बाबा भी हम पुरुषार्थ में पक्के हैं, निश्चय में पक्के हैं या कच्चे हैं, तो बाबा इसलिए माया को भेजता है। और माया जब आती है तो भी हम बाबा से हमारा निश्चय जब नहीं हिलता है, बाबा तू ही मेरा संसार है ना, ये जब पक्का निश्चय है तो बाबा कहते हैं मेरे पक्के बच्चे हैं। बुद्धि को बाबा की याद का जहाँ पहरा दे दिया है ना, माया आ नहीं सकती है। और उसका आधार है अमृत वेला। ब्रेन इतनी पावरफुल रख करके बाबा की शक्ति का बल ले जो सारे दिन में आने वाली बातों को परख करके हम निर्णय ले सकते हैं। तो इस वास्ते बाबा कहता है यहाँ रहने वालों को भी माया छोड़ती नहीं है, ऐसे नहीं कि बाबा के पास आने से छूट जाते हैं, नहीं, हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है। गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले यहाँ रहने वालों से अच्छा पुरुषार्थ कर सकते हैं, बहुत अच्छी बहादुरी दिखा सकते हैं उनको ही। क्या बाबा क्या टाइटल देता होगा हमारे गृहस्थी भाई बहन बोले, उनको ही बाबा टाइटल दे रहा है। शाबाश, अपने ये ताली बजा दो, खुशी हो रही है जो हमारे भट्टी में आए हैं, है ना? बाबा के रतन कितनी मेहनत से आए हो, समय के अनुसार तीव्र पुरुषार्थ के लिए मधुबन तपोभूमि, है ना, मधुबन बाप दादा की वरदानी भूमि में, शक्तिशाली भूमि में, इस भूमि को और शक्तिशाली बनाने के लिए, बाबा से बल लेने के लिए यहाँ पर बड़ी मेहनत से आए हो, तो बाबा ने आज आपको क्या टाइटल दे दिया? आप कौन हो? आवाज अच्छी तरह नहीं आया, शाबाश, है ना? तो कौन हो महाराज? आज सारे दिन में ये पक्का याद रखना, तो घर जाएंगे ना तो बातें आएंगी ना, तो भी ये टाइटल याद रहेगा ना, तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, है ना? तो बाबा कहता है बहुत अच्छी बहादुरी दिखा सकते हैं उनको ही महावीर कहा जाता है, जो गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान बनकर दिखाएं, कहेंगे कि बाबा आपने तो छोड़ा है। बाबा कहते हैं हमने कहाँ छोड़ा है, मुझे ही छोड़कर गए हैं। बाबा तो किसको भी छोड़ नहीं आए हैं, घर में और ही बच्चे आ गए हैं, बाकी कन्याओं के लिए तो बाबा कहता है कि तुम यह ईश्वरीय सर्विस करो। यह भी बाबा है, वह भी बाबा है, कुमार भी बहुत आए लेकिन चल न सके, कन्याएं फिर भी अच्छी हैं, कन्या सौ ब्राह्मणों से उत्तम गिनी जाती हैं। तो कन्या वह जो 21 कुल का उद्धार करे। यहाँ कन्याएं बैठी हैं, हाथ उठाए, अच्छी तरह से हाथ उठाओ। देखो आज बाबा आपको याद कर रहा है ना? तो अपने जीवन को कहाँ सफल करनी है, कहाँ करनी है, कौन जवाब देगा? कन्या जीवन को कहाँ सफल करनी है? बाबा की सर्विस में, सेवा में, है ना? बाबा को जीवन अपनी अर्पित करनी है। वो कन्या 21 कुल का उद्धार कर सकती है ना? ज्ञान के बाण मारे किन्होंने? कन्याओं ने। बाकी जो गृहस्थ में रहते हैं वह भी बीके ठहरे, आगे चल उन्हों का भी बंधन खलास हो जाएगा। सर्विस तो करनी है ना, कई सर्विस करने वाले बच्चे बाप दादा के दिल पर चढ़े हुए हैं, जो हजारों का कल्याण कर रहे हैं, तो ऐसे सर्विसेबल बच्चों पर आशीर्वाद भी आती रहेगी, वे दिल पर चढ़े रहेंगे, जो दिल पर है वही तत्पर बैठेंगे। बाबा कहते आपस में मिलकर युक्ति रचते रहो, सबके मार्ग, सबको मार्ग दिखाने की चित्र भी बनाते रहते हैं, ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं। अभी तुम समझते हो कि परम पिता परमात्मा निराकार है, वह भी बिंदी है, परंतु वह नॉलेज फुल अतीत पावन है, आत्मा भी बिंदी है। है ना, बाबा ने हमें मास्टर बनाया है, है ना, बनाया है मास्टर, टाइटल दे दिया है। अब मैं किसमें मास्टर आत्मा बनी हूँ, तो सारे दिन के अंदर कर्म करते हुए उस ज्ञान के स्वरूप मैं बन करके कर्म किया, तो बाबा कहता है उस स्मृति से कि मैं शरीर नहीं आत्मा बिंदी हूँ, निमित्त हूँ, तो बाबा कहता है बच्चे वो स्मृति, वो शक्ति, वो स्थिति उसका अनुभव कर पाएंगी। बच्चा फिर भी छोटा होता है, बाप और बच्चों में फर्क तो होता है ना। आजकल तो 15-16 वर्ष वाले भी बाप बन जाते हैं, तो भी बच्चा उनसे छोटा ही ठहरा ना। यहाँ वंडर देखो, बाप भी आत्मा, बच्चा भी आत्मा, है ना, फुल स्टॉप, बिंदी। मैं आत्मा बिंदी, बाप भी बिंदी, और सब बात में भी बिंदी लगाई तो कोई परिस्थिति के चक्कर में आएंगे ही नहीं, न किसके चक्कर में आएंगे, न किससे टक्कर होंगी, तो परिस्थिति फुल स्टॉप हो जाएगी। परंतु मैं बिंदी आत्मा समझने का अभ्यास अमृत वेले करना है। बाप भी आत्मा, बच्चा भी आत्मा, वह है सुप्रीम आत्मा, नॉलेजफुल। बाकी सब अपनी पढ़ाई अनुसार नीच व ऊंच पद पाते हैं, सारा मदार है पढ़ाई पर, है ना। अगर पढ़ाई ठीक नहीं किया तो ऊंच पद भी नहीं मिलेगा, इसलिए सारे ऊंच पद का आधार ही है मेरी पढ़ाई। पढ़ाई पढ़ने पढ़ने में भी अंतर है ना। पढ़ाई में एक तो पंचुअलिटी चाहिए, दूसरे ब्रेन की अलर्टनेस था। बाबा ने आज मेरे लिए मुरली में क्या कहा, मेरे में क्या कमी है, बाबा ने आज मेरे लिए ये कहा है, और सारे दिन में उस पॉइंट के इस संगम युग में ये प्रैक्टिकल लेबोरेटरी है, और इस लेबोरेटरी में जितना अच्छा ज्ञान को यूज करके इंद्रियों के आचरण में ला करके प्रयोग में जाकर के सक्सेस हुए, अभी ही उस इंद्रियों से सुख का अनुभव किया, वही सतयुग में उस सुख का अनुभव कर पाएंगे। न संगम में नहीं किया तो सतयुग में नहीं होगा, तो उसका आधार है संगम युग, बीज है संगम, है ना। यही हमें वो उच्च पढ़ाई का पुरुषार्थ करना है। सारा मदार है पढ़ाई पर, अच्छा कर्म करने से ऊंच पद पा लेते हैं। अभी तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, स्वर्ग में सिर्फ भारत ही था और कोई खंड नहीं था, तो छोटी न्यू इंडिया में अपना स्वर्ग दिखाए, यानी छोटी न्यू इंडिया में अपना स्वर्ग दिखाए। कहाँ है स्वर्ग, कन्याएं बताएंगी कहाँ है स्वर्ग, स्वर्ग का मॉडल है भारत में कहाँ है, कौन बताएगा, है अजमेर में, है ना। हमको ये अभी जो बाबा ने कहा ना, तो मुझे याद आया, हमारी बड़ी दादी, ये 78 की बात है, बड़ी दादी वो हमें लेकर के गई थी, इसमें हमारी बड़ी दादी निर्वैर भाई साहब 62 पूरे भारत से इस विश्वविद्यालय की बच्चों की, दादियों के बाद की इस विश्वविद्यालय की बच्चों की पहली बैच, उसमें 62 बच्चों को पूरे भारत से दादी जी ने सिलेक्ट किया 300 बच्चों में से, और उसमें मेरा भी नंबर था, और हमने और दादी जी ने इतना प्रयत्न किया, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वैसे भी मैं लीडर थी बच्चों में, बच्चों के कार्यक्रम में, और ये देखा है दादी जी ने टिकट नहीं लिया। उस मैनेजर से मिलकर के पूरी टिकट फ्री करवाई और हम सबको दादी जी लेकर के गए, और देखा वो है ना, सिरोही, आबूरोड, सिरोही, अजमेर, जयपुर, और जयपुर से फिर दिल्ली राष्ट्रपति भवन में दादी जी हमें लेकर के गए। उन दिनों में नीलम संजीव रेड्डी थे बड़ा प्रधान, है ना, और उसके सामने भाषण भी किया। तो आज हमें ये वाक्य सुनते दादी जी के सास के संस्मरण, जो दादी जी से पालना ली है, वो याद आया। तो छोटे न्यू इंडिया में अपना स्वर्ग दिखाएं, जैसे द्वारिका नाम नहीं लक्ष्मी नारायण की डिनेस्टी का राज्य लिखना चाहिए। बुद्धि भी कहती है सत्युग में पहले डीटी डिनेस्टी का राज्य होगा, उनके गांव होंगे, छोटे छोटे इलाके होंगे, यह भी विचार सागर मंथन करना है। सासा शिव बाबा से बुद्धि का योग भी लगाना है। हम यास से ही बादशाही लेते हैं, यास से ही कट उतरनी है, इसमें ही सारी मेहनत है। कईयों की बुद्धि बाहर में धक्का खाती रहती है, यहाँ बैठे भी सारा समय याद में नहीं रह सकते हैं। बुद्धि और तरफ चली जाएगी, भक्ति मार्ग में भी ऐसे होता है, श्री कृष्ण की भक्ति करते करते बुद्धि और तरफ चली जाती है। नवधा भक्ति वाले दीदार के लिए बहुत मेहनत करते हैं, कितने घंटे बैठ जाते हैं कि श्री कृष्ण के सिवाय और कोई याद न आए, बहुत मेहनत है। इसमें 8 की और फिर 16108 की माला होती है। क्यों बाबा सीधा वहां से माला पर आ गए? श्री कृष्ण की बात को लेकर के वहां भी इतनी मेहनत है, और सीधा बाबा 108 की माला पर, 8 और 108 की माला पर आ गए। तो बाबा कहता है यहां भी अगर अच्छी तरह से अभ्यास किया, अमृत वेले, जितना पक्का अमृत वेला है, ब्राह्मणों की वेला अमृत वेला, उठ तो जाते हैं, बैठ भी जाते हैं, नेमिनाथ बन करके करते हैं या पावरफुल, चलो नींद भी नहीं आती है मान लीजिए, लेकिन यथार्थ याद है, बात वहां है, और जितनी यथार्थ याद है तो आत्मा शक्तिशाली बनती है, और इसलिए तुरंत बाबा 8 और 108 की माला पर। भक्ति में जो माला का गायन है वो किसका है? वो हम बच्चों का है ना। तो बाबा इसलिए कहता है सीधा इस पर आए, इसमें 8 की और एक फिर 16108 की माला होती है, वह तो लाखों की माला भी दिखाते हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग की माला बहुत कीमती है, भक्ति मार्ग की सस्ती है, क्योंकि इसमें रूहानी मेहनत है। श्री कृष्ण को देख खुश हो डांस करते हैं, भक्ति और ज्ञान में रात और दिन का फर्क है। तुम्हें यह नहीं समझाया जाता है कि श्री कृष्ण को याद करने से कट निकलेगी, यहाँ तो समझाया जाता है कि जितना बाप को याद करेंगे उतना पाप नाश होंगे, गारंटी है, 100% गारंटी है। तुम बच्चे अभी योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। ये किसको स्वप्न में भी ख्याल नहीं होगा, लक्ष्मी नारायण ने कोई लड़ाई आदि नहीं की है। विश्व के मालिक फिर कैसे बने, यह तो तुम बच्चे ही जानते हो। बाघ कहता है, योग बल से तुमको राजाई मिलेगी, परंतु तदबीर में नहीं है तो तदबीर ही नहीं करते हैं, है ना? तदबीर में नहीं है तो फिर पुरुषार्थ भी नहीं होता। पर ये कहकर के हमें ठहर नहीं जाना है। तदबीर बनाना किसके हाथ की बात है? मेरे अपने हाथ की बात है, है ना? अगर हम दृढ़ संकल्पों के अंदर बंध जाते हैं तो दृढ़ता सफलता की चाबी है, ऊंच पुरुषार्थ भी कर सकते हैं। सर्विसेबल बनते नहीं हैं। बाबा तो डायरेक्शन देते रहते हैं कि ऐसे ऐसे प्रदर्शनी करो, कम से कम 150-200 प्रदर्शनियां एक दिन में हो जाएं, गांव गांव में चक्कर लगाओ, जितने सेंटर्स उतनी प्रदर्शनियां, एक एक सेंटर पर प्रदर्शनी होने से समझाने में सहज हो जाएगा। सेंटर्स भी दिन प्रतिदिन बड़े होते जाएंगे, जो चित्र आदि भी रख सकेंगे, चित्रों की भी इन्वेंशन निकलती रहती है। वैकुंठ का चित्र खूबसूरत महलों आदि के भारत का बनाना चाहिए। आगे चल समझाने के लिए अच्छे अच्छे चित्र निकलते जाएंगे। वानप्रस्थ अवस्था वाले घूमते फिरते भी सर्विस करते रहे। जिनका भाग्य उदय होगा वह निकलेंगे। कई बच्चे कुकर्म कर अपनी आबरू गवाते हैं, तो यज्ञ की आबरू ब्रैकेट में है इज्जत गवाते हैं। जैसी चलन वैसा पद, जो बहुतों को सुख देते हैं उनका तो नाम गाया जाता है ना। अभी सर्वगुणों में संपन्न तो नहीं बने हो ना, कोई कोई बड़ी अच्छी सर्विस कर रहे हैं। ऐसे ऐसे के नाम सुन बाबा खुश होते हैं। सर्विसेबल बच्चों को देख बाबा खुश होंगे, ना? बाबा कितने सर्विसेबल बच्चों को देख बाबा खुश होंगे ना। अच्छी सर्विस में मेहनत करते हैं, सेंटर्स भी खोलते रहते हैं, जिससे हजारों का कल्याण होना है। उनके द्वारा फिर बहुत निकलते जाएंगे। संपूर्ण तो कोई नहीं बना है, भूले भी कुछ न कुछ हो जाती है, माया छोड़ती नहीं है। इसलिए क्या करना है? अलर्ट रहना है। और जितना कर्मों के अंदर बाबा की याद है, कर्म करने से पहले बाबा को आगे करो और फिर कर्म की शुरुआत करो, तो जहां बाप है वहां पाप नहीं है। और बुद्धि में बाबा की याद का पहरा है तो परख शक्ति और निर्णय शक्ति आती है, और इसलिए विजय मेरा जन्मसिद्ध अधिकार रहता है, है ना? और इस वास्ते बाबा कहता है, बच्चे माया नहीं छोड़ती है, लेकिन उस पर विजय पाना मुझे अपने आप का काम है। माया छोड़ती नहीं है, जितनी सर्विस कर अपनी उन्नति करेंगे उतना ही दिल पर चढ़ेंगे, उतना ही ऊंच पद पाएंगे, फिर कल्प कल्प ऐसा ही पद होगा। शिव बाबा से तू कोई छिपा नहीं सकता, अंत में हर एक को अपने कर्मों का साक्षात्कार होता है, फिर क्या कर सकेंगे, जार जार रोना पड़ेगा। इसलिए बाबा समझाते रहते हैं कि ऐसा कोई भी कर्म नहीं करो जो अंत में सजा के भागी बनो, पश्चाताप करना पड़े, परंतु कितना भी समझाओ तकदीर में नहीं है तो तकदीर करते ही नहीं है। आजकल के मनुष्य तो बाप को जानते नहीं है, भगवान को याद करते हैं लेकिन जानते नहीं हैं, उनका कहना नहीं मानते। अभी उस बेहद के बाप से तुम्हें सत्युगी स्वराज्य का वर्षा मिलता है सेकंड में। शिव बाबा का नाम तो सभी पसंद करते हैं ना, शिव बाबा का नाम तो सभी पसंद करते हैं ना। बच्चे जानते हैं कि उस बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी दादा को प्यार से याद प्यार और नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, बाबा आपका पद्मा पदम, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, और वाह ब्राह्मण परिवार वाह। धारणा के लिए अब मुख्य सार है, पहली पॉइंट है अपनी चलन से बाप का व यज्ञ का नाम बाला करना है। पहली पॉइंट, अपनी चलन से बाप का व यज्ञ का नाम बाला करना है। ऐसा कोई कर्म ना हो, ऐसा कोई कर्म ना हो जो बाप की इज्जत जाए, जो बाप की इज्जत जाए। सर्विस से अपना भाग्य आपे ही बनाना है, सर्विस से अपना भाग्य आपे ही बनाना है। नंबर दो, बाप समान कल्याणकारी बन सर्व की आशीर्वाद ले, बाप समान कल्याणकारी बन सर्व की आशीर्वाद ले, आगे नंबर लेना है, आगे नंबर लेना है। गृहस्थ व्यवहार में रह कमल फूल समान रहने की, गृहस्थ व्यवहार में रह कमल फूल समान रहने की अच्छी बहादुरी दिखानी है, अच्छी बहादुरी दिखानी है। वरदान, सतुप्रधान स्थिति में स्थित रह, वरदान सतुप्रधान स्थिति में स्थित रह सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाले, सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाले डबल अहिंसक भवा, डबल अहिंसक भवा। विस्तार है, सदा अपने सतोप्रधान संस्कारों में स्थित रह सुख शांति की अनुभूति करना, यह सच्ची अहिंसा है। हिंसा अर्थात जिससे दुख अशांति की प्राप्ति हो, तो चेक करो कि सारे दिन में किसी भी प्रकार की हिंसा तो नहीं करते। यदि कोई शब्द द्वारा किसकी स्थिति को डगमग कर देते हो तो यह भी हिंसा है। नंबर दो, यदि अपने सतोप्रधान संस्कारों को दबाकर दूसरे संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाते हो तो यह भी हिंसा है। इसलिए महिंता में जाकर महान आत्मा की स्मृति से डबल अहिंसक बनो। स्लोगन, सत्य के साथ असत्य मिक्स होते ही, स्लोगन, सत्य के साथ असत्य मिक्स होते ही खुशी गायब हो जाती है। ये अव्यक्ति सारे महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आपका एक एक बोल अलौकिक हो, फरिश्तों के समान हो, हर बोल मधुर हो। इस बात पर अभी अंडरलाइन करो, तब प्रत्यक्षता होगी, क्योंकि अभी तक वाणी की शक्ति व्यर्थ जा रही है। इसलिए वाणी में जो बाप को प्रत्यक्ष करने का जोहर वह शक्ति होनी चाहिए, वह कम है। वाचा को व्यर्थ से बचाओ तो बाप को प्रत्यक्ष करने का आवाज बुलंद होगा। ओम शांति।
ओम शांति। आज हम सभी के बीच में तारा बहन जी हैं। आप अहमदाबाद के पास नहीं, गांधीनगर में चिलोड़ा सेंटर संभालते हैं, और जो आप सभी जानते होंगे आदरणीय रतन मोहिनी दादी जी के साथ में लीला दीदी रहते हैं। तो लीला दीदी जी के आप लौकिक बहन हैं, और आज आप हमारे बीच में हैं। मैं समझता हूँ मधुबन में पहली बार ही बाबा के महावाक्य सुनाए होंगे, तो हम सभी बहुत खुश हैं। एक हाथ की ताली से दीदी जी का अभिवादन करेंगे। और जैसे आज बाबा ने मुरली में महावीर बच्चों को याद किया, जो घर गृहस्थ में रह करके किस प्रकार अपने आप को महावीर के टाइटल में सिद्ध करते हैं, तो ऐसे ही एक महावीर आत्मा के बाबा की गोद में समाने का समाचार है। लंदन के ग्लोबल हाउस के सदा भाई हर साल आते थे मधुबन, कई पुराने लोग जानते होंगे, जो लगभग 40 वर्षों से भी अधिक समय से ज्ञान में थे और 20 वर्षों से भी अधिक समय से समर्पित रूप में ग्लोबल हाउस जो लंदन में है वहां अपनी सेवाएं दे रहे थे। वो वहां जॉब करते थे, उसके बाद फिर जैसे रिटायर हुए तो दादी जी की श्रीमत अनुसार सेंटर पे ही सेवाएं देते थे। तो समर्पित रूप से उनकी बेटी इंदु बहन को सभी जानते होंगे, जो लेस्टर में रहते हैं, वहां की सेवाएं संभालते हैं, तो वहां की काफी वरिष्ठ बहन जी है इंदु बहन, जो उनकी लौकिक बेटी है, वो समर्पित रूप में ही लेस्टर में बाबा की सेवा केंद्र को संभाल रही है। और सदा भाई जी की लौकिक आयु 83 वर्ष के थे वह, और ऐसी विशेष महान आत्मा जो 18 अप्रैल को उन्होंने अपना पुराना शरीर त्याग, 5-6 दिन हो गए हैं, तो अपना पुराना शरीर त्याग कर बाबा की गोद ली, और उनका अंतिम संस्कार 27 अप्रैल सोमवार को किया जाएगा। ऐसी विशेष आत्मा को हम योग में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। कुछ वर्ष पहले हम भी लंदन गए थे, तो उनसे बहुत अच्छी तरह से मिलने का मौका मिला। वो लंदन में ग्लोबल हाउस के पास में ही उनका घर भी था, वहां भी हमको ले गए थे। एकदम भले गृहस्थी थे, अदर कुमार थे, पर एकदम कुमार की तरह लाइफ जीते थे। बहुत ही स्वभाव में सॉफ्ट नेचर थी और इतने मधुर भाषी थे, सबके लिए केयरिंग थे। हमेशा ग्लोबल हाउस में एंटर करो तो सामने रिसेप्शन पर ही मिलते थे। बहुत अच्छी आत्मा, जो सचमुच कहेंगे कि कैसे रियल में बाबा के जो ट्रस्टी बच्चे होते हैं उसका उदाहरण उन्होंने सेट किया। तो ऐसी विशेष आत्मा को हम अभी योग में बैठ करके योगदान देंगे। ओम शांति।